ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्राभुतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यम् तन्त्रोटकम् वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुम् सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर चन्द्र कर रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् Chandrasekhara, 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 Pahima. Chandrasekhara, 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 Rakshama. Chandrasekhara, 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 Rakshama. Chandrasekhara, Rakshama. Chandrasekhara, Rakshama. Om, Om, Om. Prempuri Ashramayajit, Matusri Belaben Muljibhai Mishram Dahiya, स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस विषय पर विचार चल रहा है। चतुर्दश दिवसीय यह श्रृंखला 14 दिवसीय तो विगत 16 तारीख से शुरू हुआ था और आज अंतिम दिन है और स्तोत्र भी लगभग आज अंतिम है। यूं तो इस स्तोत्र पर विगत 4 वर्षों से विचार चल रहा है, अभ्यास के लिए श्लोक नंबर है शिवानंद लहरि का 97। आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के प्रति कौन सा भाव, कैसा भाव व्यक्त करते हैं, तो किस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं, ये स्तोत्रों से पता चलता है। या भक्तों को कैसा भाव रखना चाहिए, तो ये पता चलता है। प्रचरत्यभित प्रगल्भ वृत्या मदवान्ने समनः करी गरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामम् सर्वालंकारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्यं उद्यतभूषा विशेषामुपगतविनयाम् द्योतमानार्थरेखाम् कल्याणीं देवगौरी प्रिय मम कविता अन्यकां त्वं गृहाण इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतौ तिर्यग्रूपम् तव पदशिरो दर्शन धिया। हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः। स्तोत्रेणालमहं प्रवत्स्मि न मृषा नमृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसंग समये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारण प्रकरणे धानातु सस्तोमवत् दूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलम् शम्भो भवत्सेवकः। स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातु सस्तोमवत् दूतास्त्वं विदुरुत्तमोत्तमफलम् शम्भो भवत् सेवकः। शम्भो भवत् सेवकः। द्विरावृत्ति ग्रंथ समाप्ति सूचक ऐसी परंपरा है। अंत में किसी एक वाक्य का पुनरावृत्ति किया जाता है तो वह प्रसंग की समाप्ति का सूचक है। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। लगभग इस श्लोक और इससे पहले का जो श्लोक है समानार्थक ही है, भाव दोनों का समान है। वहां पर भी उस श्लोक में भी मन को हाथी कहा था और इस श्लोक में भी मन को हाथी ही कहा। उस श्लोक में भी हाथी मदवान है और इस श्लोक में भी हाथी मदवान ही है। लेकिन क्यों शंकराचार्य जी ने अचानक उस श्लोक में उस मदवान हाथी के लिए भक्ति रूपी जंजीर का प्रयोग करने के लिए कहा और इस श्लोक में भक्ति रूपी रस्सी को प्रयोग करने के लिए कहा। वस्तु तय की है, वहां पर भी भक्त जंजीर भक्ति का ही है और यहां पर भी रस्सी भक्ति की ही है। सामान्य व्यवहार में यह लगता है कि जंजीर थोड़ा जंजीर जो शब्द प्रयोग किया है काफी मजबूत है, काफी बलवान तगड़ा बंधन है वो जंजीर। शंका नहीं कि साधारण प्रयत्न से उसको तोड़ा जा सके, रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता है। रस्सी के बारे में वो भाव नहीं बनता जो भाव जंजीर के बारे में बनता है। तो जंजीर बलवान है, मजबूत है और जंजीर की अपेक्षा रस्सी, सभी के दिमाग में यह आता है कि रस्सी जंजीर की अपेक्षा कमजोर रहता है। सामान्य बंधन के रूप में रस्सी को लिया जाता है और विशेष बंधन के रूप में जंजीरों को लिया जाता है। जब बंधन विशेष होता है तब जंजीर का प्रयोग करना पड़ता है। हाथी ज्यादा ही उन्मत्त हो तो जंजीर का ही प्रयोग करना पड़ेगा और हाथी सामान्य होगा तो रस्सी से भी काम चल जाएगा, लेकिन बांधना तो पड़ेगा। वो आप लोग तो बंबई में रहते हो, यह हाथी का जो समूह है क्या तूफान करते हैं, क्या नुकसान करते हैं, इस बात को आप लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई भान नहीं है। ये तो हम पहाड़ी और जंगलियों को पता है। आसाम और नेपाल के पूर्वी प्रांत अत्यधिक हाथी उधर पाया जाता है और हाथी झुंड के झुंड चलते हैं, तो झुंड के झुंड हाथी चलते हैं। ये जिस गांव में बस्ती में घुस जाए ना, अब गांव में तो पक्के मकान तो होते नहीं है, लकड़ी के घास फूस के मकान होते हैं, सब उजाड़ देते हैं। बस्ती के बस्ती उजाड़ देते हैं, एक घर नहीं दो घर नहीं। और ये फिर घुसते हैं तो एक दो नहीं भाई, तीस तीस चालीस चालीस का झुंड एक साथ घुसता है। अब हल्ला करते हुए घुसते हैं, चिंगाड़ते हुए घुसते हैं और उजाड़ देते हैं, पूरा का पूरा बस्ती उजड़ जाता है। इसलिए ये हाथी खुला छोड़ने के पशु तो है नहीं, अब फिर भी बांधे तो कितनी को बांधे, एक दो हो, जंगलों में हजारों हाथी हैं, है ना, नेपाल और आसाम एक ही रेंज है वो। आज सुबह कल सुबह आसाम गुवाहाटी में भी छह स्केल का भूकंप आ गया। वो एक ही रेंज है वो
है?
नेपाल में जो आया था 8 रिएक्टर स्केल का था, आज सुबह गुवाहाटी में आया 6 रिएक्टर स्केल का था। और इधर अल्मोड़ा की तरफ भी आ गए शहमाजी के दिन, कश्मीर में भी आ गए, तो 2-3 जगह एक ही दिन में आ गया। वो रेंज वही है, पहाड़ी रेंज, तो छोड़ना ही पड़ता है। तो लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं हाथी को भले ही जंगल में छोड़ दो, ये मन को तो छोड़ नहीं सकते, इसको तो जंगल में क्या शहर में भी नहीं छोड़ सकते। ये तो जहां भी रहेगा वही तूफान करेगा, वही उजाड़ेगा। ये इसका नियंत्रण तो हर हालत में होनी ही चाहिए। ज्यादा ही उन्मत्त है तो जंजीर से बांधो, और थोड़ा कम है तो रस्सी से बांधो, इतना ही फर्क है भाई। बांधो तो जरूर है। शंकराचार्य जी कहते हैं यहां प्रचरत्यभिता प्रगल्भ वृत्तिया शिवजी के लिए संबोधन है परमा परमात्मा। हे परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान, एष मदवान मनः करी। ऐसा मदवान मनः करी, मदवान ऐसा मनः करी, मद से उन्मत्त हुआ हुआ मन रूपी हाथी। करी माने हाथी, कड़ी नहीं समझ लेना फिर। और जो री उच्चारण नहीं कर, रा उच्चारण नहीं कर सकता है तो कड़ी ही कहेगा वो। करी है। कैसा है ये? प्रचरति अभिता, चारों तरफ पहुंच जाता है। अभिता माने चारों तरफ, प्रचरति घूमता ही रहता है। इस मत वाले हाथी के लिए कहीं वीजा नियम भी लागू नहीं होता इमिग्रेशन में। तो पहुंच जाएगा अमेरिका, पहुंचने के लिए इसको वीजा लगेगा है? परितः प्रचरति अभितः प्रचरति, चारों तरफ घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां पर भी पहुंच जाता है। इसलिए कहा है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि क्या पहुंचेगा? ये मन पहुंचेगा तभी ना कवि पहुंचेगा है। कवि उपलक्ष्य मन, मन पहुंचेगा तभी कवि पहुंचेगा। तो सूर्य जहां नहीं पहुंचते हैं वहां पर भी ये मन करी प्रचरती पहुंच जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं, कैसे पहुंचता है? प्रगल्भ वृत्तिया प्रचरती, बड़ा साहसी पूर्वक, साहस पूर्वक विचरण करता है। प्रगल्भ शब्द का अर्थ होता है साहस, डर नहीं है उसको, किसी का डर नहीं, कहीं डरता नहीं है वो है। प्रगल्भ वृत्तिया, साहसपूर्वक प्रचरति। गरीयान स्वयं शक्तिशाली भी है और साहसी भी है। अक्सर गरीयान और प्रगल्भ वृत्या दोनों का समान अर्थ कहीं होता है। शक्तिशाली के पास ही साहस भी होता है और कमजोर के पास क्या साहस हो, है ना? लेकिन कभी कभी शक्तिशाली व्यक्ति संकोच करता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति भी दैवी संपदा से युक्त होगा तो वह संकोच करेगा, और यदि शक्ति भी है, शक्तिशाली भी है और आसुरी संपदा भी हो तो वो संकोच नहीं करेगा, वो तो साहस ही करेगा। और साहस क्या है? दुस्साहस ही करेगा वो। ये हाथी की विशेषण है, हाथी का ऐसा है। हाथी कौन सा हाथी? मन करी, मन रूपी हाथी। आपने मन को जीता है कि मन ने आपको जीता है? आज तक के एक्सपीरियंस, आज तक के अनुभव क्या कह रहा है? मन को आपने जीता है कि आपको मन ने जीता है? हैं? आप जो कहते हो मन वो करता है कि मन जो कहता है वो आप वो करते हो? अक्सर ज्यादा करके लोग जो है मन के कहना ही करते हैं, समझे कि नहीं? मन के पीछे लगे हैं, मन के कहना करते हैं। इसलिए तो एक भक्त ने, महात्मा ने बड़ा सुंदर लिखा है भाई, मुझे वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। आत्मभूपतिरयम पुरातन, ये जो आत्मा राम है पुरातन भूपति है, खानदान राजा है, ये सम्राट है। ये एक वर्ष का प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह, पुरातन है। मनमोहन सिंह 10 वर्ष के प्रधानमंत्री, ये तो पुरातन। आत्मा पुरातन भूपति, हजारों हजारों वर्ष पुराना ये राज खानदान का, रजवाड़े का राजा है, ये खानदानी राजा है ये। लेकिन दुख की बात है, खानदानी रजवाड़ा होते हुए भी, राजा होते हुए भी दुख की बात है कि अब जाकर इस समय इसकी अवस्था कैसी है? पीत मोह मई मदिरा मदा कुलम, मोह मई मदिरा पीतम मदा कुलम। मोह रूपी मदिरा का पान करके ये उन्मत्त हो चुका है। परिणाम क्या हुआ हमारा? राजा लोग मदिरा पीते हर्जा क्या है? बोले मदिरा पी ले तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मदिरा पीते पीते अपनी राजसी ठाट बाट को भूल जाए, यही दुर्भाग्य है। है हाँ, राजा और मदिरा के चलते क्या हो रहा है? अपनी राजसी ठाट बाट वो सब भूल गए, और परिणाम क्या हुआ? किंकरस्य मनसोपि किंकर ही इंद्रिय ही आहा किंकरी कृता। बड़ी दुख की बात है कि वह नौकर के भी नौकर के यहां नौकरी करके गुजारा कर रहा है। किसके यहां नौकरी कर रहा है? मालिक के यहां नौकरी करे तो गनीमत है भाई। नौकरी किसके यहां कर रहा है? हैं? नौकर के भी नौकर के यहां नौकरी कर रहा है। तुम पहले राजा थे, उस समय तुमने जिसको नौकर रखा था, आज तुम्हारी राजपाट सब तुम्हारे मदिरा पान करते करते, मोह मदी मई मदिरा का पान करते करते उन्मत्त होते होते तुम्हारे राजपाट सब चौपट हो गया। परिणाम क्या हुआ? जिसको तुमने राजा थे उस समय नौकर रखा था, उसने भी अपने यहां जिसको नौकर रखा था उसके यहां जाकर तुम आज टुकड़ों के लिए नौकरी करके गुजारा कर रहे हो। क्या विडंबना है। किंकरस्य मनसः अपि किंकर ही इंद्रिय ही आहा किंकरी कृता। आत्मा तो राजा था, सम्राट था, आत्मा की सेवा करने के लिए आत्मा के मातहत में रहकर आधीन में रहकर काम करे, इसके लिए परमात्मा ने मन का सृजना की, मन की सृष्टि की, मन की रचना की और मन को नियुक्त किया कि है मन। तो आत्म सम्राट की सेवा करना ठीक से। तो मन ने कहा कि आपकी जो आज्ञा है हम करेंगे भाई। तो आत्मा भूपति ने कहा था कि तू सेवा करेगा हमारी? बोले हाँ करेंगे। अच्छा ले चल। तो मन को अपने नजदीक रख लिया आत्मा ने, क्योंकि राजा का मंत्री माने सेवक है वो मंत्री है, वो भी छोटा मोटा तो है ही नहीं। राजा के नजदीक रहने वाला छोटा मोटा तो है ही नहीं। तो उसने भी अपने यहां नौकरी करने के लिए नौकर रख ली थी। तो किसको रखा था? बोले इंद्रियों को। बड़ा तगड़ा है ये मन है। राजा ने तो एक कर्मचारी रखा था, उस कर्मचारी ने तो 10 रख ली कर्मचारी। बोल मां है इतना बड़ा कर्म होगा ये। 10 इंद्रिया अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया किसने? मन ने। अब इंद्रियां जो है यानी मन रूपी नौकर के नौकर इंद्रियां तो क्षुद्र हैं। सामान्य भी हुआ तीसरी क्लास चौथी क्लास के कर्मचारी हो गए ना वो, आप लोगों की भाषा में वो कौन से क्लास के कर्मचारी है? तीसरे चौथे क्लास के कर्मचारी है ना। तो अक्सर देखने में आता है अभी अभी मर गए ना दारू पी के है? तो ये दारू पी के मरने वाले कोई बंबई के सेठ थोड़ी थे उसमें। बेचारे वही ऑटो रिक्शा चलाने वाले, घर के बर्तन मांजने वाले, कपड़े धोने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, वही ग्रुप था। बिल्कुल लोअर क्लास के व्यक्ति थे वो लोग और वो पीते थे और पी गए मिथाइल, क्या नाम है वो केमिकल, पी गए सब दारू के नाम पर सब मर गए। तो ये इंद्रियां स्वाभाविक ही रूप में विषय रूपी मदिरा पीने लग गए। तो कभी कभी इंद्रियां 10-10 मिलकर अपने मालिक मन को भी कहा, अरे साहेब अब भी लगा लीजिए ये घूंट। यही भाषा बोलते हैं ना वो लोग, साहेब आप भी जरा ये घूंट लगा लो। तो मन रूपी जो मालिक था वो भी, अच्छा भाई तुम लोग लगा रहे हो तो हम भी एक घूंट लगा लेते हैं। लगा लिया। परिणाम क्या हुआ कि उसने अपना मालिक जो आत्मा भूपति था उसको भी जाकर कहा, साहेब आप भी एक घूट लगा लीजिए, उसको भी बुला लिया। करते करते उनके साथ मिल मिलकर सब अपनी सम्राटपना चौपट कर गए। अब परिणाम ये हुआ कि अपनी दैनंदिनी गुजारा के लिए कहां जाएं, तो अब वह इंद्रिय रूपी नौकर के नौकर इंद्रियों के नौकरी कर रहा है। आज इंद्रियां जो कह रही हैं वो मानने लग गया है। कौन? आत्मा रूपी भूपति है, मन के नौकर के नौकरों का जो कहते हैं वो मानने लगा, क्योंकि इंद्रियां एक टुकड़ा दे देती है उसी के लिए ये आत्मा दिन भर भटकता रहता है। प्रचरत्यभित प्रगल्भ वृत्या मदवानेश मन करी गरीयान परिग्रीय नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदम दृढ़म नयामुम। अमुम माने इस हाथी को, इस मन रूपी मन करी मदवान मन करी, इस मन उन्मत्त मन रूपी हाथी को भक्ति रज्जुआ परिग्रीह भक्ति रूपी रस्सी से अच्छी तरह बांध कर दृढ़म स्थाणुपदम मजबूत खूंटे में ले जाकर इसको बांधो। अमम नया ले जाकर बांधो। अब आप ही बांधो महाराज, हमारे में ताकत नहीं है। हमने कोशिश तो किया लेकिन हम नहीं बांध पाए, अब आप ही बांधो। इस स्थाणु शब्द वेदांत में बहुत प्रयोग होता है। यहां स्थाणु कहते हैं, गीता में भी ये पद आ चुका है ना? अचलोयम सनातन स्थाणु कूटस्थ शब्द प्रयोग करते हैं। स्थाणु माने कूटस्थ, कूटा हिलाने पर भी न हिले, कूटस्थ अविचल अविक्रिय। परमात्मा स्थाणु है, कूटस्थ है कि मन जो है वह जब तक उस स्थाणु के साथ बंधेगा नहीं तब तक ये भटकेगा, परमात्मा से साथ जुड़ेगा नहीं तब तक ये भटकता ही रहेगा। अब यहां तक तो स्तुति का क्रम है। भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा, ये 98वां जो श्लोक है, इस श्लोक भगवान शिव को अर्पण करना चाहते हैं। यानी इस श्लोक के द्वारा पूरी शिवानंद लहरी नामक जो स्तोत्र है सबको भगवान शिव को अर्पण करना चाहते हैं। कैसी है तुम्हारी स्तुति? शिवानंद स्तोत्रम लहरी नामक स्तोत्र कैसी है? शिव के अनुकूल है कि नहीं? परमात्मा के अनुकूल है कि नहीं? शंकराचार्य जी अपने मुख से बखान करते हैं। आप लोग तो गृहस्थी हो ना, है ना? आपकी एक जवान बेटी हो, वो शादी करने लायक हो तो आप लड़का या लड़के के मां बाप से संपर्क रखते हो और गुजारिश करते हो, सिफारिश करते हो, अनुरोध करते हो कि हमारी कन्या आपके घर में बहू बनकर आवे, है ना? लड़के को कहते हो कि आप अपने पत्नी बना लो, लड़के के मां बाप से कहते हो कि आप अपने घर में बहू बनाकर लाओ, तो कदाचित उन लोगों ने पूछ लिया कैसी है तुम्हारी लड़की, तो तुम क्या कहोगे? बहुत गंदी है, बोलोगे? बोलोगे? कोई बोलेगा अपने मुख से? काली है, कलौटी है, लंगड़ी है, हैं? बोलोगे? मूर्ख है, दुर्गुण से भरी हुई है, ऐसा कोई बोलेगा? बोलो, कोई मां बाप अपने लड़के के बारे में हैं बोलेगा कोई? हाँ, ये बात अलग है, शादी करके घर में बहू बनाकर ले आने के बाद सास जरूर बोलेगी कि ये कुलक्षणा है, कुलंगार है, है? चांडाल है, है? भले हर हजार उसके दुर्गुण बखान करेगी। कौन? सास। लेकिन सास इस प्रकार के दुर्गुणों का बखान करते हुए भी उस बच्ची, उस बेटी की मां अपने बेटी का हमेशा सद्गुणों का ही बखान करेगी। करेगी कि नहीं, बोलो? आप लोग यही करते हो कि नहीं? हैं? यही करते हो? इसीलिए यदि दोष है तो दूसरे के माल पर है, अपने माल पर कोई दोष नहीं है। ग्राहक भी यही कहता है, तुम किसी दुकान में कोई माल खरीदने जाओ तो एक मुझे ये वस्तु चाहिए, दिखाइए। बोले हाय हाय बढ़िया है, लीजिए। एक वस्तु निकालेगा, अब उसको देखा, इधर देखा, उधर देखा, यूं देखा, त्यों देखा, फिर दूसरी बार कहा कि आपके पास दूसरा नहीं है? बोले ये ले जाइए, ये बढ़िया है, देखो इस कंपनी का है, देखो ऐसा है वैसा है। बोले नहीं नहीं, कोई दूसरा दिखाइए इसके अलावा, नहीं है? बोले हाय हाय, पहले उसका गुणानुवाद किया, फिर कहता कि नहीं दूसरा अच्छा, दूसरा लीजिए, ये इससे बढ़िया है। फिर कहेगा वो, अरे इससे बढ़िया तो पहले क्यों नहीं दिखाया? पहले वही बढ़िया कहता रहा, जब कहा कि कोई दूसरा दिखाइए तो वो कहता इससे बढ़िया ये लीजिए। फिर आप उसको देखते रहेंगे, फिर कहेंगे और दूसरा नहीं है? नहीं है। अच्छा चलते हैं दूसरी दुकान में। नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, मैं आपको और बढ़िया दिखाता हूं, बोलता है। और इससे दोनों से और भी बढ़िया था तो पहले क्यों नहीं दिखाया उसको? तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं वो लोग, और करते 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 क्या है पता है? व्यापारी, आप लोग व्यापारी हो तो करते क्या है? सो सबसे घटिया है उसको लास्ट में सबसे बढ़िया करता है, करके प्रस्तुत कर देता है, ये तो इतना बढ़िया है, एक ही पीस बचा है हमारे पास, तो ऐसा सम्मोहित हिप्नोटाइज कर देता है ग्राहक को, तो लास्ट में कहता है अच्छा ये ठीक है, ये पैकिंग। तो सबसे बढ़िया पहले दिखाया था उसने, उस पर आपकी नेत्र आपकी दृष्टि नहीं टिकी तो समझता है कि ये भ्रमित हो रहा है, इसको ठीक से उल्लू बनाओ, फिर उससे घटिया फेर दिखाएगा है, उसके गुणानुवाद गाएगा, उस पर भी आपकी दृष्टि नहीं टिकी, उससे और घटिया दिखाएगा, उसकी खूब बखान करेगा है। ये साइकोलॉजिकली ये होता है, करते करते सबसे घटिया माल दिखाएगा और बखान ऐसा करेगा कि आप सम्मोहित हो जाएंगे। हाँ, इसने वास्तव में असली पीस लुका के रखा था, वो तो कहता ही यही है, है? कई बार इसके लिए आए, हमने लुका के रखा ही क्योंकि हमारे पास एक ही पीस था, क्योंकि अब आपको जरूरी है तो आप ये पीस ले जाइए, लेकिन पैसा इतना लगेगा, उल्लू बना दिया बस तब तक। और आप उसके बातों पर ऐसा आ गए कि उसने जितना कहा उतना दे दिया। बड़ा विचित्र है, अपने माल सभी प्रशंसा करते हैं। अब दुकान में जो माल रखी होती है, दिन में 100 ग्राहक जाते हैं, उन माल को 100 के 100 ग्राहक 10-10 बार देखते हैं, अल्टा पलटा करके देखते हैं कि नहीं। तुम गए, तुमने भी उसको देखा, छोड़ दिया, वो गए, वो भी नहीं देखा, छोड़ दिया, तो माल बिकता भी जाता है। वही माल 50 को दिखाते रहते हैं और सब बिक जाता है। तुमने जिसको छोड़ा था, दूसरा उसको खरीद के ले जाएगा, दूसरे ने जो छोड़ा था, तीसरा उसको खरीद के ले जाएगा, तीसरे ने जो छोड़ा था, चौथा उसको खरीद के ले जाएगा। आखिर दुकान के सारे माल बिक जाते हैं कि नहीं, बोलो है? तुमने छोड़ा था, फिर सबको छोड़ना चाहिए था ना, दूसरे लोग छोड़ते नहीं है, छांट छांट के बढ़िया ले जाएंगे। हर ग्राहक छांट के ले जाता है और हर ग्राहक छोड़ा हुआ ही ले जाता है छांट के ले जाता है, लेकिन ले जाता है छोड़े हुए, दूसरे ग्राहक का छोड़ा हुआ ही ले जाता है छांट के। लो जी, ये साइकोलॉजिकल है, मनोविज्ञान है ये सब। तब शंकराचार्य जी अपनी कविता की बखान करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? जैसे आप शादी करने योग्य अपनी कन्या का, जब तक शादी नहीं होती है तब तक सबके सामने बखान ही करते हो, निंदा करोगे? घर में मां उस बेटी को डांट डांट कर रुला के छोड़ती है, हैं? अलची है, नालायक है, मां उसको डांटती रहती है घर में अकेले में। लेकिन वही मां जब लड़कों की बात करने के लिए जब पार्टी आती है, तो मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, बड़े गुणवान है, मैं भोजन बनाने जाती हूं तो आती है सर, भोजन बनाने मदद करती है, उसको आता है भोजन बनाने। अब यहां मां जब किचन में भोजन बनाने लगती है, बेटी टीवी देखकर बैठती है तो उसको हैरान करती है डांट के, मां के हाथ बटाती नहीं है, न झाड़ू लगाती है, न पोछा लगाती है, बैठी है टीवी खोलकर, मैं अकेले क्या क्या करूं, कैसे लड़की पैदा हो गई। आप लोगों की भाषा है ये, आप लोगों की भाषा है ये, है? अब जब कोई लड़की देखने के लिए आएगा तो उसके सामने फेरी, मेरी लड़की है, सज्जन है, सफाई बहुत करती है, पढ़े लिखी है, पूजा करती है, भले एक माला न जपती हो। ये व्यवहार में ये सब चल रहा है उल्लू सीधा। अब शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, अभी मूल्यांकन करना। शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे हैं, महाराज
सर्वालंकार युक्तां सरल पदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां वा सद्भि संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्यां
उद्यत भूषा विशेषा मुपगत विनयाम द्योतमानार्थरेखाम कल्याणी देव गौरी प्रिय मम कविता कन्यकाम त्वं गृहाण। अंतिम लाइन तो समझ गए होंगे ना, हे गौरी प्रिय देवा, भगवान शिव के लिए संबोधन है, हे गौरी प्रिय, हे देवा, है? इमाम कल्याणीम मम कविता कन्याम त्वं गृहाण। ये 100 श्लोक की मेरी कविता रूपी कन्या है, मैंने ही इसको जन्माया है, मैंने ही इसको पाला पोसा है, मैंने ही इसको पढ़ा लिखा है और आज ये सर्वयोग्य सर्वगुण संपन्न है। कल्याणी मम कविता कन्याम त्वाम गृहाण, हे देव, मेरी कविता रूपी कन्या को आप सहर्ष स्वीकार करिए, वरण करिए, आप स्वीकार करिए, ये कल्याणी है, आपका कल्याण करेगी महाराज। कभी भी आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मन में कभी भी खिन्नता व्यक्त करने नहीं देगी, खिन्नता का भाव आने ही नहीं देगी। कैसी है मेरी कविता कन्या, कन्या सर्वालंकार युक्ताम, सभी अलंकारों से युक्त है, रूप का अलंकार। कविता में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दो होते हैं, एक होता है छंद और दूसरा होता है अलंकार। एक कविता में ये दो चीज अनिवार्य है, छंद और अलंकार। किस छंद में लिखा हो उसके नियम है छंदों की, और उसमें अलंकार का प्रयोग किया हुआ हो, कौन सा अलंकार है। बहुत से अलंकार होते हैं, अर्थापत्ति अलंकार, उपमा अलंकार, यत्व अलंकार, प्रतिषेधा अलंकार, परिकर अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, जैसे पहले श्लोक आप लोगों ने पढ़ा, यो या ये यौ यौ, ये अनुप्रास, ऐसा अनुप्रास होता है। उपमा अलंकार, इस श्लोक में उपमा अलंकार कविता को कन्या के साथ उपमित की है, सर्वगुण संपन्न एक कन्या जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से ये सर्वगुण संपन्न कविता है। सर्वालंकार युक्ता सरल पदयुताम, मेरी बेटी, आप कहते हो ना कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है, अलंकार से युक्त है, और आप खुद ही कहते हो भाई कोई आपकी बेटी देखने के लिए घर में आने वाला हो, बात करने के लिए घर में आने वाला हो, आप खुद ही बेटी को सुबह से ही कहते हो आज कहीं जाना नहीं, कर में रहना, तुझे देखने आ रहे हैं, नहा धो के कपड़े बढ़िया पहन लेना, बेटी कहेगी कि क्या पहनू मां, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले तेरे पास भले ही न हो तो मेरी वो साड़ी पहन लेना। तो आप कहोगे स्वामी जी आपको ये सब व्यवहार कहां से आ गया। तो आप करते हुए मां कहती है कि वो साड़ी पहन ले। अरे साड़ी तो पहन लूंगी, साड़ी खाली साड़ी से तो होगा नहीं मां, गहने मेरे पास तो है ही नहीं। बोले तू आज वो मेरा वो गहना पहन लेना, वो गहना वहां रखिए, वो रखिए, ले बेटी अच्छी तरह केस कर लेना, बिल्कुल ऐसा अलंकार पहनकर टिप टाप होकर बैठना कि सामने वाला आते ही देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाए। शंकराचार्य कहते हैं कि हे इतने समय लगाकर मैंने अपनी बेटी को श्रृंगार पटार किया है, सजा के रखा है, सर्वालंकार युक्ताम, जितने भी साहित्य में काव्यों में, ध्यान देना, जितने भी साहित्य या काव्यों में कविताओं में प्रयोग होने वाली अलंकारें हैं, इन कविताओं में शिवानंद लहरी की कविताओं में श्लोकों में मैंने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। किसी श्लोक में कोई अलंकार तो किसी श्लोक में कोई अलंकार, किसी श्लोक में कोई अलंकार, लेकिन इन श्लोकों में सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, इसलिए हर अलंकार से युक्त है ये श्लोक, ये कविता माने ये स्तोत्र। मैं इसकी कविता के रूप में व्याख्या करूंगा, आप अपने बेटी के रूप में समझते रहे ना, तो अर्थ लगेगा ये उपमा अलंकार। सर्वालंकार युक्ताम सरल पदयुताम, मेरी बेटी के चरण बहुत सुंदर है, चलती है तो बहुत ही सौम्य चलती है, सरल पदयुताम। लोग चलने भी नहीं जानते, वो कुछ कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो अलक्षण का प्रतीक माना जाता है। चलते समय में जमीन में आवाज आवे, थम थम आवाज आवे, वो अच्छा नहीं माना जाता है, वो अलक्षण का प्रतीक है। इस तरह जमीन में पांव रखना चाहिए कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को भी उसके चलने का आहट ना आवे, यही उसके गुण हैं। चलते समय में भी वो सरल पदयुताम, आहा क्या सुंदर चलती है, बगल में वह आने आने पर भी उसके आने का कोई पता ही नहीं चलता है। नहीं तो ऊपर छत में दूसरे माले में कोई चलता है ना, नीचे ऐसा लगता है कि वो छाती में ही छत गिर रहा हो। ऐसे भी चलते हैं कि नहीं तुम्हारे सोसाइटी में, बोलो नहीं? अरे चलते हैं। अरे भाई धीरे धीरे रखो पांव। साधु वृत्तां, तीसरी विशेषता है साधु वृत्तां, सरल पदयुताम का अर्थ होता है इन कविताओं में जो पद का प्रयोग किया मैंने वह क्लिष्ट व्याकरण के हिसाब से क्लिष्ट पदों का प्रयोग नहीं किया है। जैसे डुकरेकरण, ये पद क्या है, बहुत क्लिष्ट पद है, वैयाकरणियों के लिए यह डुकरेकरण ये पद बहुत क्लिष्ट पद है, बड़े बड़े विद्वानों के मत्था चक्कर जाए ये डुकरेकरण आदि आदि पद, लेकिन मैंने इन कविताओं में ऐसा कोई पदों का प्रयोग नहीं किया जिसका अर्थ समझने में मत्था खपाना पड़े, आराम से सरल पदों का प्रयोग किया है। साधु वृत्तांत, हाँ ये है छंद, वृत्त माने छंद। पहले अलंकार की बात हुई थी, सर्वालंकार, अब छंदों की बात आई। मैंने ये शिवानंद लहरी स्तोत्रम साधु वृत्तम अच्छे अच्छे छंदों के प्रयोग करके इसकी रचना की है। इसमें शिखरणी छंद है, उसका भी हमने प्रयोग किया है किसी श्लोकों में, और कुछ श्लोक फिर बसंत तिलका छंद है, कुछ श्लोक मालिनी छंद है, कुछ श्लोकों का हमने आर्य छंद में रचना की है, कुछ छंद को उपजाति छंद में, हमने श्लोकों को उपजाति छंद में रचना की है, और कुछ श्लोकें शार्दूल विकृत छंद में हमने रचना की है, कुछ शालिनी कुछ मालिनी, ये छंद है। ये छंदों का नियम है, वो कोई भी श्लोक कोई भी कविता रचना करो तो उनको ये छंद में आबद्ध होकर ही उसकी रचना करनी पड़ती है। कितने अक्षरों का एक लाइन में प्रयोग करना, कौन कौन गणों का प्रयोग करना, पहले कौन गण का प्रयोग करना, हाँ, य गण म गण ल गण भ गण, ये छंदों में गणों का प्रयोग होता है। गणों के आधार पर दीर्घ कहां प्रयोग करना, ह्रस्व कहां प्रयोग करना, ये छंद रचना में ये बात पूरी तरह ख्याल रखी जाती है। तो जो काव्य रचना में छंदों का प्रयोग करने की विधि है, उसी विधि से मैंने इन कविताओं को रचना की है। उसको कहते हैं साधु वृत्तांत। अब उधर कन्या के रूप में साधु वृत्त माने स्वभाव, सरल स्वभाव की है। मेरी बेटी, आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मेरी बेटी बहुत सरल स्वभाव की है। शंकराचार्य जी कहते हैं मेरी कविता सरल स्वभाव की है। सद्वी संस्तूयमानम्। आप अपने बेटी की प्रशंसा करते करते यहां तक कह देते हो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी पढ़ती है सभी टीचर उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, मास्टर लोग भी सब प्रशंसा करते हैं, हाँ? भले ही वह झंडा लेकर नहीं चलेगा नहीं चलेगा करती हो कॉलेज में, है कि नहीं? बोलो, विद्यार्थी आंदोलन में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आंदोलन करते हैं ना। भले ही स्कूल में तूफान किया हो, कुर्सी उठाकर फेंक दिया हो, है? प्रिंसिपल के कमरे में ताला लगा दिया हो, आग लगा दी हो, लेकिन उसकी मां उसके पिता अपनी बेटी की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं? मेरी बेटी स्कूल में भी सभी इसकी प्रशंसा करते हैं, क्या अनुशासित है। आपको पता नहीं है तो देखो साधु वृत्तम अनुशासित का उसने सिल लेके आया है, देख लो ये सब। सर्टिफिकेट खूब दिखा देंगे, आजकल तो सर्टिफिकेट का लफड़ा चल रहा है, स्मृति ईरानी का है? दिल्ली में भी है? दिल्ली में भी सर्टिफिकेटों का लफड़ा चल रहा है, क्या नहीं करते बाबा। संस्तूयमानम्। सद भी, अरे सज्जनों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है, साधुओं ने बड़ी प्रशंसा की है। कोई भी साधु को शिवानंद लहरी का इस श्लोक आप सुना दो, क्या कहना, वाह 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 वाह, क्या सुंदर कविता है, आह ये कविता की प्रशंसा करते हैं। सरस गुणयुताम है? कविता में रसों का प्रयोग होता है, काव्य में किसका प्रयोग होता है, रसों का, अलंकार छंद और रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, वीर रस, विवत्स रस, उग्र रस, सौम्य रस। कविताओं के मैं ये रसों का भाव आना चाहिए। सेनाओं को कोई कविता सुनाने जाओ, उसमें करुणा रस वात्सल्य रस सुनाओगे तो सेना क्या करेगी, वो एक मच्छर को मारने में भी डरेगी, वो तो तुम्हारे देश के धर्म की रक्षा करेंगे, वहां तो तुमको कहना पड़ेगा हाँ, हत्वा वा प्राप्त से स्वर्गम, जित्वा वा भोग से महिम, मारो लड़ो युद्ध करो, युद्ध करते करते तुम यदि मर गए तो तुम्हें सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। लड़ो मारो मरो, या मारो या मरो, जे नहीं हटना, ये क्या है, वीर रस, इनके खून खौलने लग जाता है ये कविता सुनाते समय, तो वो पीछे हटेंगे। वात्सल्य रस, एक मां और बच्चे के भाव को व्यक्त करना होगा तो वीर रस का प्रयोग करना होगा। वह कविताओं में एक मां अपने बच्चे के प्रति क्या भाव व्यक्त करती है, उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग करना पड़ेगा। करुणा रस, कोई साधन संपन्न धनिक व्यक्ति किसी गरीब असहाय की सेवा करने लगा हो, उसके लिए प्रेरित करना होगा, तो वहां उस कविताओं में करुणा रस का प्रयोग करना पड़ेगा, और तुम उस कविता को पढ़ते पढ़ते उसका हृदय द्रवीभूत हो जाए, और देने की इच्छा न हो तो भी देने की इच्छा जग जाए, आदि आदि। कविताओं में काव्यों में रस का प्रयोग होता है, श्रृंगार रस, समझे कि नहीं, वैराग्य रस। अब एक सन्यासी को श्रृंगार रस सुनाओगे तो क्या हाल होगा उसका, तुम्हारा लड़का शादी नहीं कर रहा हो तो श्रृंगार रस सुनाओ, तुम्हारी लड़की शादी नहीं कर रही हो तो श्रृंगार रस से भरे हुए कविताएं उसको खूब सुनाने शुरू करो। अब एक सन्यासी के पास जाकर श्रृंगार रस की कविता सुनाकर करोगे क्या, वहां तो जितना हो सके वैराग्य रस से भरे हुए कविता सुनाओ। गात्रम संकुचितम गतिर विगलितम भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता गात्रम चलालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनै भार्यान शुश्रूषते आकष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसा पुत्रोपि मित्रायते। वैराग्य रस देख लो, ये बुढ़ौती का वर्णन कर दिया है, बुढ़ौती में ये सब चीज आने वाली है, इसलिए वैराग्य ही होना चाहिए। भोगान भोक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा कालो नहीं हत वयमेव याता। देख लो ये क्या है, वैराग्य रस। हम समझते थे कि हमने इतना भोगा इतना भोगा इतना भोगा, लेकिन ये भोग तो ज्यों के त्यों हुए, हम ही भोग द्वारा भोगे गए, हम कमजोर हो गए, वो तो ज्यों के त्यों हैं। हम समझते कि हमारी तृष्णा कमजोर हो गई, तृष्णा बूढ़ी हो गई, लेकिन तृष्णा तो ज्यों के त्यों तरुणी हो रही है और हम ही बूढ़े हो गए। हमने सोचा कि हमने तो 80 साल निकाला, अरे 80 साल तुम्हारी कहां गई, तुम्हारा 80 साल गया, तुम्हारा गया, तुम घाटे में हो गए, तुम्हारा बैलेंस कम हो गया, कालो नहीं आता, हमने कहा काल को टाल दिया, अरे काल क्या टाल, काल हमको खा गया। वैराग्य रस, ऐसे काव्यों में रस का प्रयोग होता है। शंकराचार्य जी कहते मैंने प्राय करके सभी रसों का इन कविताओं में प्रयोग किया है, वीर रस का भी, विवत्स रस का भी, वात्सल्य रस का भी, कारुण्य रस का भी, वैराग्य रस का भी, सब रसों का प्रयोग किया है। सरस गुणयुताम लक्षिताम लक्षणाढ्याम, दूसरी बात है कि इन कविताओं के माध्यम से लक्ष्यार्थ को भी हमने, केवल वाच्यार्थ का प्रयोग नहीं किया है, कविता में वाच्यार्थ असंगत होने पर भी लक्ष्यार्थ सुसंगत है। उद्यत भाषा विशेषा उपगत विनयाम, उद्यत भाषा सुक्तियां बोलते हैं उसको, सुभाष, सुभाषित माने सुक्ति, अच्छे अच्छे दूसरों को सुनाने के लिए, अपने को मनन करने के लिए सुक्तियों का प्रयोग किया है। सुक्ति रत्न जैसे चमकते हैं वैसे ही सुक्ति रत्न, सुक्ति माने सीपी में ही मोती होता है, इसलिए सुक्ति नाम सीपी का, सीपी से उत्पन्न होने वाला मोती है उसकी जो चमक है, ऐसे सुवासित हैं इसमें। उपगत विनयाम द्योतमानार्थ रेखाम, लक्षणार्थ आप देख लो मेरी बेटी का हाथ का रेखा देखो, है सभी लक्षणों से युक्त है मेरी बेटी का रेखा, आयु की रेखा भी पूरी है, बीच में नहीं मरेगी, आयु रेखा आपको पता है कि नहीं, अपने हाथ में आयु रेखा होता है, दूसरे धन रेखा होता है, और तीसरा विद्या रेखा है, चौथा स्वास्थ्य रेखा है, रेखा सामुद्र विज्ञान, उसको सामुद्र विज्ञान बोलते हैं रेखा संबंधी, सब रेखा देखो तो हर रेखाएं एक से एक है, वाह क्या गजब की रेखा है इसके हाथ में। द्योतमानार्थ रेखां कल्याणी, हर हालत में ये बहुत ही कल्याणी शुभ लक्षणा है, सबका कल्याण करने वाली है। एक बार दिल्ली में कथा कर रहा था, एक माताजी आकर, पंजाबी माताजी थी, उसका एक बेटा था, शादी करने की बातचीत चल रही थी, तो मैं कथा करके खत्म करके कमरे में जाने लगा तो महाराज आपसे कुछ बात करनी है। हमने कहा ठीक है बोलो बैठो क्या कहना है, तो आगे बैठ के उसने पहले तो हमारी बड़ी प्रशंसा कर दी, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बड़े पुरुष हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो हम भी मक्खा हो गए, भाई बढ़िया क्या प्रशंसा कर रही है, है? बोलो क्या कहना चाहती हो मां। बोले महाराज मेरे बेटे की शादी की तैयारी चल रही है, आप बताओ आने वाली बहू कैसी होगी। ये सब सच घटना है, मैं गप नहीं कर रहा हूं। उसने ये कहा कि आप बता दीजिए महाराज जो बहू आएगी कैसे आएगी। अब उसने इतनी प्रशंसा की तो हम भी नाटक करने लगे, चपटा आंखा बंद करके, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान किया, ऐसे थोड़ी बोलना है। दो तीन मिनट के बाद आंख खोल के श्वास लंबे श्वास फेर कर, माता जी जैसे भी आएगी आपका कल्याण करने वाली आएगी, जो बहू आएगी आपके कल्याण करने वाली आएगी, महाराज सेवा करने वाली आएगी ना। आपने कहा सेवा करे चाहे झगड़ा करे, आपके कल्याण ही करेगी वो है। आप समझ लेना, ध्यान ले, ध्यान देकर सुनना, चाहे सेवा करे चाहे झगड़ा करे वो आपके कल्याण करेगी वो। सो कैसे महाराज, सेवा करे तो ठीक है, झगड़ा करे तो हमारा कैसे कल्याण करेगी। तो हमने एक दृष्टांत दिया, सेवा करने वाली से झगड़ा करने वाली अच्छी होती है, दृष्टांत दिया। वो तुम्हारी खूब सेवा करेगी तो तुम्हें बहुत सुख होगा, सुख होगा तो तुम्हारा पुण्य क्षय होगा। बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को, बोलो ये स्वीकार करोगे कि नहीं। क्योंकि तुम्हारे पुण्य से वो बहू अच्छी आ रही है और तुम्हारे पुण्य के चलते ही वो तुम्हारी खूब सेवा कर रही है, और सेवा कर रही इसलिए तुम्हें बड़ा सुख बड़ा आनंद आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है, तुम्हारा जो अच्छा बैलेंस था वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा है ये, अच्छा बैलेंस तुम्हारा माइनस हो जाए, ये अच्छा है। अब यदि कोई बहू आए तुमसे झगड़ा करने वाली तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के चलते गलत बहू आती है झगड़ा करने वाली, और तुम्हारे पाप के चलते वो झगड़ा करेगी, झगड़ा करेगी तो तुमको दुख होगा, और दुख होगा तो पाप कटेगा। तो तुम्हारे जीवन के जो पाप कर्म है दोष है क्षय हो जाएंगे। तो कौन सा क्षय करना चाहते हो बोलो, पुण्य क्षय करना चाहते हो कि पाप क्षय करना चाहती हो बोलो, हैं? पाप क्षय हो ये चाहती हो तो तुम्हारी बहू दुष्ट आवे तो तुम्हारा पाप क्षय होगा, और तुम चाहती हो कि मेरा पुण्य क्षय हो तो अच्छी बहू आए। तो मैं तो जहां तक समझता हूं मेरा नौकर सेवा करने वाले के अपेक्षा झगड़ा करने वाले आए वो अच्छा है, क्योंकि मेरा पाप कटेगा। समझे कि नहीं? पाप कटना अच्छा है कि पुण्य कटना अच्छा है? पुण्य घटे और पाप बचा रहे ये तो अच्छा नहीं है, पाप कटे पुण्य बचा रहे, और पाप काटने के लिए तो झगड़ा करने वाली बहू आना पड़ेगा कि नहीं बोलो। अब स्वीकार करो तुम्हारे बेटे की शादी हुई कि नहीं? हमने तो वेदांत के दृष्टि से समझा दिया उसको, उसको जचा कि नहीं भगवान जाने, जच तो आपको भी नहीं रहा है, हैं? जस तो आपको भी नहीं रहा है कि आप भी नहीं चाहोगे कि मेरी बहू झगड़ा करने वाली आवे, लेकिन है यही चीज, सत्य बात तो यही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कल्याणी मेरी बहू, मेरी कविता हर हालत में कल्याणकारी है, जो भी इसको धारण करेगा, आप धारण करो चाहे हम धारण करें, इस कविता सबके कल्याण करने वाली है। इमाम कविता कन्याम तम गृहाणा, आपको अर्पण करता हूं महाराज। इदम ते युक्तम वा परम शिव कारुण्य जलधे, शिव के लिए संबोधन है, परम शिव कारुण्य जलधे शंभो स्वामिन है? बहुत संबोधन है इसमें, एक ही श्लोक में, क्योंकि अंतिम श्लोक है इसलिए बहुत संबोधन है। कारुण्य जलधे माने करुणा का सागर, परम शिवा महेश्वर, शंभो कल्याणकारी, स्वामिन सर्वस्वामी सबका स्वामी अभिभावक, तौ हरिहरौ गतौ तीर्य ग्रूपम तब पद शिरो दर्शन दिया। आपके पद और सिर, चरण और मस्तक के दर्शन करने के लिए हरिहरौ गतौ, हरि ब्रह्माणौ गतौ, हरिहर ने हरि ब्रह्माणौ गतौ, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए मस्तक के दर्शन करने, विष्णु नीचे की ओर गए चरण के दर्शन करने के लिए। तीर्यक रूपम, दोनों ने तीर्यक रूप धारण करके गए, ब्रह्मा पक्षी रूप धारण करके ऊपर गए, विष्णु पशु रूप धारण करके नीचे गए, दोनों तीर्यक योनि है, समझे कि नहीं? हाँ, आप अधय योनि है, वृक्ष ऊर्ध्व योनि है, पशु पक्षी तीर्यक योनि है। आप ऊपर से खाना खाते हैं तो सीधा नीचे जाता है, तो आप अधज स्रोत हैं। वृक्ष नीचे से पानी लेते हैं तो ऊपर जाता है, वृक्ष ऊर्ध्व स्रोत हैं। पशु पक्षी इधर से लेते हैं तो इधर जाता है तिरछा, तीर्यक स्रोत हैं, है ना? तो ऊर्ध्व स्रोत, अधज स्रोत, तीर्यक स्रोत, ये जीवों के वर्गीकरण है। ब्रह्मा और विष्णु ने तीर्यक योनि को प्राप्त किया, पक्षी भी तीर्यक है, पशु भी, सुअर भी तीर्यक योनि है। किसके लिए उन्होंने ये योनि धारण किया? तो बोले विष्णु ने आपके चरण पता लगाने के लिए धारण किया, दर्शन करने के लिए, ब्रह्मा ने मस्तक का दर्शन किया। इदं ते युक्तं वा परमशिव कारुण्य जलधे गतौ तीर्यग्रूपं तव पद शिरो दर्शन धिया हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि। ब्रह्मा ऊपर की तरफ दिवलोक की तरफ गए, सत्य ब्रह्मलोक तक गए, और विष्णु भुवि पाताल की तरफ, पाताल तक पहुंचे। चरंतौ श्रमयुतौ, विचरण करते करते थक गए, श्रमयुतौ चरंतौ, लेकिन आपको आपका दर्शन उनको नहीं हो पाया, थक गए लेकिन आप उनके सामने प्रकट नहीं हुए। कथम शंभो स्वामिन कथय मम वेद्योऽसि पुरत। यहां द्व्यर्थक लाइन है कविता कि उन लोगों को भी आपका ठीक से दर्शन नहीं हुआ तो फिर मुझे कैसे दर्शन होगा, ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ है, महाराज इतना श्रम करने पर भी उनको दर्शन नहीं हुआ और आपकी ऐसी कृपा हुई, कथम, मैंने कोई परिश्रम ही नहीं की, यहीं बैठा हो रहे बैठे बैठे ही, वेद्योऽसि पुरत, आप तो मेरे आगे ही खड़े हो गए, देख लो, न मैं पशु रूप धारण करके पाताल में गया, न पक्षी रूप धारण करके दिवलोक गया, न कहीं भटका, न कुछ, यहीं बैठे बैठे मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं और आप सीधे ही दर्शन देने के लिए यहां आ गए, ये कैसे आ गए मैं आश्चर्य हो रहा हूं। चलो, ये आपकी बड़ी कृपा है। और वहां पर भी शिव महिमनि स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने इसी प्रसंग के साथ कह दिया है, स्वयं तस्थे ताभ्याम तव अनुवृत्तिम किम न फलती, पुष्पद महिमनि स्तोत्र में ब्रह्मा और विष्णु के सामने ही भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम घमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, मैं बड़ा हूं, ये घमंड छोड़ो। दुनिया में परमात्मा बड़ा है, परमात्मा से बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा नहीं। तुम हम सब के सब उस परमात्मा की ही अंश हैं, अंग हैं। सेवा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, उसी का जप करते हुए, उसी को समर्पण होकर, अभिमान रहित ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, विष्णु तुम पालन करो। कर्ता भाव रहित, अभिमान रहित होकर सृष्टि और पालन करोगे तो सृष्टि करते समय में वैषम्य सृष्टि करने का दोष तुमको नहीं लगेगा, पालन करते समय में वैषम्य रक्षा पालन करने का दोष भी तुमको नहीं लगेगा। अन्यथा अभिमान पूर्वक सृष्टि करोगे तो वैषम्य सृष्टि का दोष तुमको लगेगा, और अभिमान पूर्वक पालन करोगे तो वैषम्य रक्षा करने का पालन करने का दोष तुमको लगेगा। इसलिए बस अभिमान रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से सृष्टि और पालन करो, इसी में तुम्हारा हमारा सबका कल्याण है। तो शंकराचार्य जी ने इस तरह भगवान शिव के स्वयं आगे उपस्थित होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज, ब्रह्मा विष्णु को इतना परिश्रम करने पर भी आपने दर्शन नहीं दिया और मुझे एक सन्यासी के सामने आप इतनी आराम से खड़े हो गए हो। चलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। एक श्लोक है क्या? ओ अच्छा अच्छा हाँ। स्त्रोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा। शंकराचार्य जी कहते हैं स्तोत्रेण अलम अहम्, अब स्तुति में नहीं कर सकता, अलम हाँ बस स्तोत्रेण अलम अहम् प्रवच्मि न मृषा देवाविरिंचादया। देवता लोग ब्रह्मा विष्णु आदि स्तुत्या नाम, संसार में बहुत स्तुति स्तुत्य व्यक्ति हैं। लोग ब्रह्मा की भी स्तुति करते हैं, विष्णु की भी स्तुति करते हैं, इंद्र की भी स्तुति करते हैं, स्तुत्यों की गणना करते हैं, तो बहुत लोग हैं इस संसार में, समझे कि नहीं? गणना प्रसंग समय, लेकिन मेरी दृष्टि में तो स्तुतियों की गणना करने के प्रसंग में भले ही लोग कुछ भी कहें, मेरे दृष्टि में तुम अग्रगण्यम विदु, आप पहले नंबर के स्तुत्य हैं। उसके बाद विष्णु ब्रह्मा इंद्र कुबेर वरुण सब होंगे, हैं स्तुत्य तो बहुत हैं, लेकिन आप तुम अग्रगण्य। बड़ा ही सुंदर उपमा दिया है यहां। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुष स्तोमवत। अब इन स्तुतियों के महात्म्य कौन कितने महिमा वाला है, महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के जब विचार करने लगते हैं तो महाराज मैं सत्य कहता हूं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जितने भी हैं वो सब तो धान के ऊपर जो तुष है, छिलका है, उसकी तरह सिद्ध होकर फेंके जाते हैं, और आप ही चावल की तरह सिद्ध होकर हैं, आप चावल की तरह सिद्ध होते हैं, और ये सब भूसे की तरह, गुजराती भूसा नहीं हो, गुजराती में खाते हैं ना भूसा, हाँ। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे धाना तुषस्तोषम तोमवत दूतास्तम विदु उत्तमोत्तम फलम। सब लोग तो उड़ के चले जाते हैं, खेत में जब किसान खेती करता है, फसल को झाड़ता है, तो तो उस अनाज में कचरा जो होते हैं ना, तो उसको उड़ाने के लिए कि पक्का करता है या ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करता है या मशीन लगाता है हवा से उड़ाने शुरू करता है, तो वो सब उड़ जाते हैं। कौन? जिसके अंदर दाने नहीं है, भूसा और दाना नहीं है, ऐसे सबको उड़ के चले जाए। और जिसके अंदर दाने हों वो उड़ के उड़ नहीं सकते। तो ये जितने भी स्तुत्य हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब के सब को एक ही उसमें मिलाकर जब उड़ाने लगते हैं, ये सब उड़ के चले जाते हैं, आप एक बचते हैं दाने की तरह। महात्म्याग्र विचारण प्रकरणे दाना सुसा स्तोमवत दूतास्त्वम विधु उत्तम उत्तम फलम। उस अनाज में जो ठोस उत्तम फल है वो नीचे बैठ जाता है, बाकी सब उड़ के चले जाते हैं। हे शंभो भवत सेवकाहा, मैं आपकी सेवक हूं और आप ही मेरे सेव्य हैं। आपसे बढ़कर और दुनिया में कोई सेव्य नहीं, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई स्तुत्य नहीं। इस भाव से शंकराचार्य जी ने अपनी कविता को भगवान शिव के चरणों में समर्पण किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।